हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन गौर से आंशी की हर एक बात सुन रहा था और उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो रहा था। आंशी आगे बताते हुए बोली, मेरे खास दोस्त विधिक के हाथों मर चुके थे, लेकिन वहाँ और भी कुछ दोस्त थे जो पेरिस नहीं जा पाए थे। पहले कुछ दिन तक मैं अपने पापा के दोस्त के यहाँ रही और फिर मैंने अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट ले लिया। पूरे दिन कॉलेज में बिताने के बाद रात को अपार्टमेंट में जाती थी सिर्फ सोने के लिए। मैंने वहाँ 4 महीने बहुत आराम से बिताए। मुझे विधिक से अलग हुए लगभग 8 से 9 महीने बीत चुके थे और इतना टाइम काफी होता है किसी को आगे बढ़ने के लिए। मैं भी विधिक राणा को पूरी तरह भूल चुकी थी और आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन एक रात कॉलेज में एक पूरा दिन बिताने के बाद आंशी बहुत थक चुकी थी और रात के 8 बजे के करीब अपने अपार्टमेंट पर पहुंची। उसके अपार्टमेंट में अंधेरा था। स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए उसने खुद से कहा, लगता है मुझे अब इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स लगवा लेने चाहिए ताकि उसे मैं अपने फोन से हैंडल कर सकूं। अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। आंशी ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ने लगी। बस इतनी सी बात, समझो कल सुबह तक हो जाएगा बटरफ्लाई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी। आंशी ने मोबाइल सामने की तरफ किया तो उसके सामने विधिक खड़ा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके आवाज सुनकर आंशी के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। वो दौड़कर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी विधिक तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया गया। आंशी उससे छूटने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी, पर विधिक की पकड़ काफी मजबूत थी। उफ, ये तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशें और अब मुझसे बचने की नाकाम कोशिश, विधिक हंसकर बोला। आंशी अपने पैर से विधिक को मार रही थी। उसे छोड़ने के बजाय विधिक ने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैंने कभी तुम पर अपना जोर आजमाया नहीं, शायद तभी तुम्हें नहीं पता कि, खैर छोड़ो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें वो सब सहना पड़ा। विधिक ने अपना एक हाथ आंशी के मुंह पर लगा रखा था तो दूसरे हाथ से उसे कसकर पकड़ रखा था। वो उसे घसीटते हुए अंदर लेकर आया और कमरे की लाइट ऑन की। उसने आंशी को वहाँ रखे काउच पर धकेल दिया और तेज कदमों से चलते हुए घर का दरवाजा बंद किया। मौका देखकर आंशी जल्दी से उठी और लैंप उठाकर उसे मारने के लिए आई। उसके वार करने से पहले ही विधिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और सर्द आवाज में कहा, ऐसी गलती कभी मत करना बटरफ्लाई, सृष्टि ने भी करने की कोशिश की थी। मुझे इससे सख्त चिढ़ है जब कोई पीछे से वार करता है। विधिक ने आंशी के हाथ से लैंप छीन लिया। आंशी उससे बात नहीं कर रही थी, वो चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। देखो, ऐसे चुप मत रहो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम बोलते हुए ही अच्छी लगती हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम मुझे तड़पा रही थी यहाँ रहकर। विधिक आंशी के पास आया और उसे अपने गले से लगा दिया। वहीं आंशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैट ने उसे जो भी ट्रेनिंग दी थी वो उसके बारे में सोच रही थी। घबराना नहीं है आंशी, अभी इसके पास गन है, लेकिन एक बात श्योर है कि ये मुझे जान से कभी नहीं मारेगा। मुझे मौका देखकर ही यहाँ से भागना होगा, अभी अपने हाथ पैर मारना व्यर्थ होगा। मैट ने कहा था कि जहाँ बस ना चले वहाँ एनर्जी वेस्ट करने के बजाय दिमाग लगाओ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा, मेरे अगेंस्ट मन ही मन प्लानिंग कर रही हो कि कैसे मुझसे दूर जा सकती हो? मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, इस बारे में सोचना भी मत, वरना मैं जबरदस्ती करने को मजबूर हो जाऊंगा, विधिक उससे अलग होकर बोला। मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लूं, उसके बाद बात करते हैं। आंशी ने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया और किचन में जाने लगी। विधिक उसके पीछे पीछे आया। आंशी किचन में अपना खाना गर्म कर रही थी। उसने पीछे से जाकर उसे हग किया। तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल गया था, तुमने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, देखा खुद से दिमाग लगाने की वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। विधिक ने आंशी का हाथ पकड़ा और उस पर किस किया। उसके ऐसा करने पर आंशी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उस वक्त कुछ कह भी नहीं कर पा रही थी। तुमसे बात करने का मौका ही कहाँ मिला था? कोई भी नॉर्मल इंसान इतना बड़ा सच जानने के बाद तुमसे बात करने नहीं आ सकता। तुमने मेरे फ्रेंड्स को मार दिया क्योंकि वो तुमसे बात करने आए थे, सिर्फ बात करने। आंशी ने बात करने बोलने पर जोर दिया। तब विधिक बोला, नहीं, वो सिर्फ बात करने नहीं आए थे, वो मुझे धमकाने आए थे कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं। ऐसे कैसे चला जाऊं? प्यार करता हूं तुमसे, ऐसे हर किसी के कहने से थोड़ी ना चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, आंशी आंखें घुमाकर बोली। वैसे तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे उस खास आदमी ने मेरे साथ क्या किया। मुझे इस हद तक टॉर्चर किया कि मैं मरने की भीख मांगने लगी। मेरी हालत खराब थी, फिर भी उसने मुझे ठंडी कमरे में रखा। मेरे मरने की हालत होने पर मुझे बाहर निकालकर बचाया ताकि फिर से टॉर्चर कर सके। फिर पता नहीं एक अजीब से पिंजरे में ले जाकर बंद कर दिया, जहाँ थोड़ा सा भी हिलने पर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे। उसने कहा कि तुम भी ऐसा ही करते हो, तो बस वो तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा था। आंशी के साथ जो भी हुआ था वो उसे विधिक को बता रही थी और उसके लिए वो सुनना मुश्किल हो रहा था। श्श, मरे हुए लोगों की बात नहीं करते हैं, रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, कहकर उसने आंशी को अपनी तरह पलटा और पहले की तरह उसके होठों पर इंटेंसली किस करने लगा। विधिक पूरी तरह उसमें खोया हुआ था, जबकि आंशी मन ही मन खुद को शांत और चौकस रहने की कोशिश कर रही थी। फोर स्टार्स, वो कहते हैं ना, आसमान से टपके और खजूर में लटके। आंशी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। क्या लगता है आपको, वो भाग पाएगी इस साइको के चक्कर से? कमेंट में बताना जरूर।